साथियों नमस्कार, आप सुन रहे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पाथुरकर। आज हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर विश्वविख्यात गांधीवादी विचारक रघु ठाकुर जी रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार ठाकुर साहब
जी। नमस्कार पाथुर जी।
साहब जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में देश में किसानों की स्थिति क्या है और उन्हें फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए?
देखिए, देश में किसानों के फसलों के दाम के बारे में इस सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। जब पिछले 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया जी भी थे, उन्होंने एक बात उठाई थी, उन्होंने कहा था कि दाम बांधो नीति होना चाहिए। और दाम बांधो नीति के में का सिद्धांत ये था कि हर फसल का और हर सामान का, कारखाने के सामान का भी लागत मूल्य निकाला जाए, उसमें 50% जोड़ के उसको बेचा जाए, उससे अधिक में ना बेचा जाए, ये दाम बंद नीति। बाद में भारत सरकार ने जो स्वामीनाथन आयोग बनाया, उस स्वामीनाथन आयोग ने भी इसी रिपोर्ट के आधार पर ये सिफारिश की कि किसानों की फसलों का लागत मूल्य निकाला जाए और लागत मूल्य में 50% जोड़कर उनको दिया जाए। हालांकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मैं अधूरा मानता हूँ, इसलिए मैं अधूरा मानता हूँ कि किसानों की फसल का तो दाम एक बार बाली तय हो जाए, पर अगर कारखाने की चीजों का दाम तय नहीं होगा तो एक असंतुलन पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो किसान को फसल के दाम मिलेंगे वो अंत देने वाले हैं कारखाने वाले के पास, उद्योग वाले के पास, बाजार में जाएंगे तो बाजार में उनको पैसा निकल जाएगा। इसलिए जो दाम बांधो नीति है वो दोनों पर लागू होती थी, किसान की ऊपर भी, किसान के लिए था कि न्यूनतम मूल्य है दाम बांधो नीति का, न्यूनतम मूल्य है कि लागत धन 50%, और कारखाने वाले के अधिकतम मूल्य था कि लागत प्लस 50%, यानी कारखाने वाले को अधिकतम और किसान के न्यूनतम, ये किसी दाम बंद नहीं थी। इसका एक हिस्सा संविधान आयोग ने कहा है, तो भारत सरकार ने उसको भी नीचे लागू नहीं किया है। हमारा सरकार से कहना यह है कि दाम बांधो नीति लागू की जाए, संविधान आयोग की रिपोर्ट को किसानों के लिए लागू किया जाए, इसके साथ साथ कारखानों के जो उत्पादन है उनके भी दाम बढ़ जाए, क्योंकि ये जो बाजार का मुनाफा है, अब 50-50 गुने दाम पर, 100-100 गुने दाम पर सामान बिक रहा है, दवाइयां बिक रही है, जरूरत की चीजें बिक रही है, इसके ऊपर भी रोक लगाई जाए। दूसरी बात यह है कि किसान के लिए अगर आपने मान लो आज संविधान आयोग की रिपोर्ट या लोहिया जी की दाम बांधो नीति के आधार पर लागत मूल्य और 50% देना शुरू कर लिया, परंतु जिस प्रकार से बाजार की महंगाई बढ़ रही है, तो जैसा एक स्थायी आयोग है मूल्य सूचकांक आयोग, जो कर्मचारियों के लिए उनका वेतन बढ़ाता है, पेंशन बढ़ाता है, जितने प्रतिशत महंगाई बढ़ती है उस आयोग के अनुसार उतने प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। इसी प्रकार से किसान के लिए होना चाहिए, किसान के जो न्यूनतम फसल के दाम तय हो, यानी लागत मूल्य 10-50% लागू तय हो, उसमें प्रतिवर्ष मूल्य सूचकांक के आधार पर जो महंगाई है उतने परसेंट उसमें वृद्धि होना चाहिए, ये किसानों के नीति बनाना जरूरी है।
ठाकुर साहब जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि वर्ष 2022 में जब लगा था तो हम कोरोना से उभर पाए थे, और अभी 2023 में हम आगमन करेंगे, 2022 की विदाई हो रही, फिर कोरोना का भय दिखाई दे रहा है, और ये सर्वविदित है कि जब देश में कोरोना की स्थिति थी, एकमात्र किसान ही ऐसा था जिसने इस देश को संभालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इस कोरोना के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जो कोरोना है, कोरोना बीमारी तो हो सकती है, हम उस बारे में तो नहीं कह सकते कि विज्ञान कह रहा है, परंतु कोरोना के काल में जिस प्रकार का शोषण किसानों का हुआ है, जिस प्रकार का शोषण आम आदमी का हुआ है, जिस प्रकार का तकलीफ आम आदमी को हुई है, और सरकार ने जो एक पक्षी व्यवहार किया है, बहुत चिंता का विषय है। अभी संसद में जो सरकार की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो औसत आय थी 6,000 रुपया, वो घटके हो गई थी 4,000 रुपया, और शहरी क्षेत्र में जो औसत आय थी 8,000 रुपया, वो घटके हुई थी 6,000 रुपया, यानी एक सामान्य व्यक्ति या गरीब व्यक्ति की जो औसत आय है उसमें 2,000 रुपया प्रतिमाह की कटौती हो गई थी, घटौती हो गई। परंतु इसी दौर में जो दुनिया के 1% उद्योगपति या बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, कारपोरेट लोग हैं, उनकी संपत्ति का जो इजाफा है वो 300 गुना हो गया, और कोरोना काल में हर 30 घंटे में एक नया करोड़पति अरबपति बनता गया, अरबपति और संपन्नवान बनता गया। तो ये क्या वजह है कि कोरोना की बीमारी के चलते गरीब तो लाचार हो रहा है, उसकी आमदनी घट रही है, तो अमीर की आमदनी बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? तो कई बार ऐसा लगता है कि कोरोना के नाम पर जो तकनीक के मालिक लोग हैं, जो उपभोक्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उनका धंधा और व्यापार बहुत बढ़ा, इसका उनको लाभ मिला। जैसे कोरोना के नाम पर सरकार ने कहा कि यदि आपको लेन देन नहीं करना है, रुपये में भी आपके लिए कीटाणु लग सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, पेटीएम करिए आओ, यानी मोबाइल से तो करिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा डिजिटल हो जाइए, कि डिजिटल होने का मतलब यह है कि जो डिजिटलाइज करने वाली कंपनियां हैं, जो उसका तकनीक देने बनाने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए भारी व्यापार मिल गया। अब अगर मान लीजिए कि 20 करोड़ लोग ऐसे हो गए जो सामान्य लोग थे कि जिनको डिजिटल पेमेंट करना या ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन बिजली का बिल चुकाना, ऑनलाइन वगैरह वगैरह करना शुरू हो गया, तो ये जो डेटा जाएगा, इस डेटा का मालिक जो कंपनी के लोग है उनका मुनाफा कब आया। तो जो ये आईटी कंपनियां हैं, इन आईटी कंपनियों ने कोरोना काल में बहुत भारी मुनाफा कमाया है और एक प्रकार से उन्होंने दुनिया को लूट लिया, कई लाख करोड़ का मुनाफा उन्होंने कमाया है। तो ये कोरोना जो है, एक बार ऐसा लगता है कि कोरोना ऐसा नहीं है कि दुनिया को डिजिटलाइज करके और उसके नाम पर मुनाफा कमाने का जो तरीका है इन कंपनियों ने निकाला हो। अभी चीन से चर्चा आई थी कि भाई चीन में कोरोना फैल गया, काफी प्रचार हुआ। हालांकि एक बात जरूर है कि हमारा जो मीडिया है, ये मीडिया बहुत हद तक अमेरिका प्रभावित रहता है और जब से अमेरिका और चीन के संबंधों में कोई तनाव आए है, बिगाड़ आया है, तब से लगातार ऐसी खबरें आती हैं जैसे चीन में करोड़ों लोग मर रहे हो, ऐसे फोटो दिखाई जा रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है। जबकि चीन ने अभी कल फैसला किया है और जितने भी प्रतिबंध थे कोरोना के नाम पे सब खोल दिए, सारे कारखाने खोल दिए, सारी इंडस्ट्री खोल दी, सारे स्कूल खोल दिए, सारा समाज खोल दिया। तो चीन तो कह रहा है कि कोरोना मुक्त हो गए, परंतु अमरीकी मीडिया या जो CIA कंट्रोल मीडिया है वो कह रहे नहीं, कोरोना है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब हिंदुस्तान में कोरोना का भय पैदा हो गया है, तो हो सकता है कि ये जो आईटी कंपनियां हैं, ये जो बड़े बड़े कारखाने और कारपोरेट के मालिक लोग हैं, इन लोगों ने फिर से खेल शुरू किया हो, कोरोना के नाम पर प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध लगाने के बाद में फिर अपना लूट का काम शुरू करो, फिर अपना मुनाफा बढ़ाओ, अपनी तकनीक को बेचो। इस 2 साल में जो नई तकनीक आई है वो नई तकनीक बेची जाए और जो कोरोना के नाम की कंपनियां हैं, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने भी अभी कई नई प्रकार की चीजें ईजाद की हैं और उनको बिकना है। अगर वो नई ईजाद कर लिया है पर बिकेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी नई विधि निकाली जा रही है, नेजल स्प्रे बनाया जाएगा। अब एक नेजल स्प्रे जो है वह जिससे कि कोरोना के कीटाणु मारे जाएंगे, उससे उसका दाम हम ये बता रहे हैं कि न्यूनतम 300 रुपया होना है। तो अब उसमें जो GST लगेगा वगैरह वगैरह लगेगा, अब या तो क्या होगा कि सरकार खींचेगी। अगर मान लो कि सरकार ने फिर से 80 करोड़ लोगों के लिए नेजल स्प्रे बांट दिया तो कितना पैसा हो जाएगा? 80 करोड़ लोगों को अगर मान लो 300 रुपए का एक भी नेजल स्प्रे दिया जाएगा तो वो मोटा मोटी तौर पे करीब करीब 3-4 लाख करोड़ रुपए का धंधा उन कंपनी वालों को मिल जाएगा और जो लोग खरीदेंगे वो उसके अलावा होंगे। ये सारा का सारा जो खेल है, इस कारपोरेट एक प्रकार से कारपोरेट टेक ओवर है इंडस्ट्री के ऊपर, मुनाफे के ऊपर और जनता को लूटने का भी खेल है। तो इसलिए कोरोना बीमारी नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, कोरोना बीमारी हो सकती है और हो, परंतु कोरोना के भय को बता के जिस प्रकार के तरीके से क्या कर रही है वो संदेह पैदा करते हैं और ये संदेह लगता है कि शायद वो हिंदुस्तान को फिर से एक बार उसी प्रकार से लूटने के चक्कर में पिछली बार हुआ था। जब पिछले साल कोरोना आया था 2020-21 साल में, तो आपको याद है कि हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कारपोरेट कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया था। दुनिया की जो कारपोरेट कंपनियां हैं उनका मुनाफा बढ़ करके 30 लाख करोड़ तक बढ़ गया, लेकिन एक भी किसी बड़ी कारपोरेट कंपनी को नुकसान नहीं हुआ। तो ये कोरोना कैसा कोरोना है, गरीब की आय तो घटा देता है, अमीर की आय बढ़ा देता है। ये कोरोना कोई एक नए प्रकार की बीमारी पैदा कर दी गई है जो गरीब के खिलाफ और अमीर के पक्ष, इसलिए ये कोरोना जो है ये सरकार का हथकंडा भी लगता है, कारपोरेट का हथकंडा लगता है और सरकार और कारपोरेट मिले हुए हैं, इस दोनों का मिलेगा खिलो सकता है।
भाई साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज कपास के रेट बहुत ही कम है और जब भी कपास के भाव के संबंध में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके भाव तय किए जाते हैं, लेकिन हम यदि देश में इसकी बात करें, हम छिंदवाड़ा जिले में सौसा पांडुरना में कपास होता है और यहाँ पर समर्थन मूल्य बहुत कम है और लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा फसलों का, तो ये समर्थन मूल्य किस तरह से ये फसलों का निर्धारण करते हैं?
समर्थन मूल्य के बारे में भी जो मैंने आपसे कहा, एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि कपास के कोई दाम इंटरनेशनल तय नहीं होते, किसी भी चीज के कोई दाम इंटरनेशनल तय नहीं होते। हर मुल्क में अपने अपने चीजों के पैदा करने के अलग तरीके हैं और रास्ते। अब जैसे मान लीजिए आप अमरीका में जाए, तो अमेरिका में जो किसान है उस किसान के लिए जो सब्सिडी मिल रही है या जो सरकारी सहायता मिल रही है वो कितनी है, ब्रिटेन में कितनी है, फ्रांस में कितनी है। तो अगर मान लो कि वहाँ की लागत को सब्सिडाइज करने के लिए वहाँ की सरकारें समर्थन में पैसा दे रही हैं, तो भारत को पैसा नहीं दे रही ना, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कोई मूल्य तय नहीं सकता है। अब अमरीका की जो ताजी स्थिति मैं आपको बताऊँ, अमरीका की सरकार ने वहाँ प्रति किसान को $4 लाख की मदद की है। अब $4 लाख का मतलब हो गया कि मोटा मोटी तौर पे जो वहाँ बांटा गया है तो कई कई मोटा मोटी 3-3.5 करोड़ रुपया के साथ हो करके, अब 3-3.5 करोड़ रुपया अगर एक किसान के लिए वहाँ मदद मिल गई है तो उससे तो लागत का मूल्य कम कट गया। तो वो अंतरराष्ट्रीय दाम जैसे कपास का तेल तो एक बात, इसी बात है कि भारत सरकार को चाहिए कि जो हमारे यहाँ का कपास है उस कपास के समर्थन मूल्य को निकाले, उसको पहले तय करे। अब समर्थन मूल्य के निकाले में क्या होता है कि अभी एक कमी है, वो कमी ये होती है कि ये लोग केवल इसमें जो इनपुट्स हैं उनके दाम ज्यादा मुख्तर पर जोड़ते हैं या आपका जो बाहर का लेबर है, पर हमारे यहाँ जो किसान काम करता है, खेती करता है, कपास पैदा करता है, वो खुद भी खेत पर काम करता है, वो खुद भी एक लेबर के समान काम करता है। किसान का जो प्रश्न है, उनके परिवार का जो प्रश्न है, वो उसको समझ के एक बात इसी बात है कि अभी कई चीज वो चीज नई प्रकार की आ गई है। आजकल कीटाणु आ रहे हैं और कीटाणु नाशक दवाइयों के लिए काफी खर्च आता है, वो इसमें समझ लिखा जाता है। तो अकेले आप लेबर और बीज का दाम जोड़ के जो लोग समर्थन मूल्य निकालते हैं या जो लागत मूल्य निकालते हैं गलत सिद्धांत है। तो जो मूल्य होना चाहिए उसमें लागत में वो सारी चीज शामिल होना चाहिए, उस लागत में किसान की अपनी भी जो श्रम है उसका भी मूल्य शामिल किया जाना चाहिए। उसके परिवार के तीन लोग हैं, इनमें से दो लोग मान लो उस खेत पर काम करने में सहयोग करते हैं, कोई कपास बीनने जा रहा है तो कोई कपास को देखने जा रहा है तो कोई पानी देने जा रहा है, तो वो भी मूल्य शामिल करना चाहिए। एक दूसरा, जितने भी प्रकार के इनपुट्स हैं यानी बीज के अलावा भी जो दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड हैं और जो चीजें हैं का मूल्य हो, जो पानी वगैरह दिया जाता है उसका जो मूल्य हो, ये सारी चीजों को जोड़ करके ही लागत मूल्य निकाला जाना चाहिए और तब 50% अग्रित जोड़ के देना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का कोई मतलब नहीं है, ये बहाना है। हर देश के अपने अपने राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उनमें उनकी पैदावार का राष्ट्रीय मूल्य क्या होना चाहिए।
भाई साहब, अंतिम प्रश्न आपसे हम पूछना चाहते कि 2022 में आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आपके लिए ऐसा कोई अविस्मरणीय क्षण जो देश के हित में हुआ हो।
अविस्मरणीय काम?
हाँ,
सरकार का?
सरकार का नहीं,
हाँ।
अविस्मरणीय क्षण आपके माध्यम से, जो अविस्मरणीय क्षण आपके दिल में जिससे जनता का हित हुआ हो।
अब हम लोग तो देखिए लगातार जनता के हित के काम में लगे रहते हैं और कुछ बार सफलता मिलती भी है, कुछ बार सफलता कई बार कम भी मिल पाती है, कुछ बार नहीं मिल पाती है। तो हमारी कसौटी ये नहीं है कि हम सफल कितने हो पाए, हमारी कसौटी तो ये होती है पात्रकर जी कि हमने लगातार परिश्रम किया, लगातार मेहनत की, लगातार अपने लक्ष्य के लिए काम किए। तो आज की दृष्टिकोण में, आज की परिस्थिति में हमको सफलता के कसौटी को बदलना चाहिए। आज सफलता हासिल हो जाना ही सफलता नहीं है, बल्कि सफलता के लिए काम करना भी इस मौसम में, इस वातावरण में, आज के वातावरण में मुझे सफलता है। अगर आप ईमानदारी के साथ में राजनीति का काम कर रहे हैं, अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, सवालों को उठा रहे हैं, ये भी अपने सफलता है। इसी बात है कि कई ऐसे सवाल हमने उठाए हैं, इन सवालों पर सरकारी तंत्र में चर्चा भी शुरू हुई। इससे किसानों की जो हम लोग का जो गाय की समस्या है, लावारिस गाय, इस समस्या से पूरा देश परेशान है और गायें मर रही हैं, लोग मर रहे हैं, सड़कों पर बाधाएं आ रही हैं। अब इसको लेकर हमारी पार्टी एक बार से पार्टी से बात उठाई कि भाई इस समस्या का हल जो सरकार आज करे वो नहीं है। अभी जितने हमारे यहाँ गौशालाएं चल रही है, इन अधिकांश गौशालाओं की स्थिति है कि अनुदान तो जाता है परंतु वो अनुदान खत्म हो जाता है, उसको लोग खा पी के अयाशी करते हैं, मस्ती करते हैं और गाय मर रही। हमने सवाल दिया कि भाई किसान लोग हैं, किसान के लिए प्रति किसान को जो गाय दे दी जाए तो किसान और उसके उनके पालन पोषण के लिए एक गाय पर 3,000 रुपए महीने के 6,000 रुपए किसानों मिल जाए तो सरकार 72,000 रुपए मिल जाएगा। तो अगर 72,000 रुपए साल किसान को मिल जाएगा तो किसान की भी आय बढ़ेगी, गाय भी बच जाएंगी। इस सवाल को लेकर हमने उठाया है, अभी इस पर तंत्र में कोई चर्चा शुरू हुई है। दूसरी बात हमने उठाई है कि जो आयुष्मान कार्ड है, अब इस आयुष्मान कार्ड का इन्होंने नियम बनाया है कि केवल ईडब्ल्यूएस वालों या जो बीपीएल वाले हैं उनके लिए इनका आयुष्मान कार्ड बना। अब जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास के दोस्त है, एक मिडिल क्लास है जो अपर मिडिल क्लास है जिसमें व्यापारी तबका और लोग आते हैं जिनके पास बीमा भी होता है, एक अपर मिडिल क्लास है जो बड़े बड़े अधिकारियों का है उनके पास बीमा होता है, पर जो सामान्य मिडिल क्लास है यानी जो बीपीएल से ऊपर वाला है पर जो पैसे वाला संपन्न अमीर नहीं है, ऐसे लोग भी जो संख्या आज हिंदुस्तान में कहीं मोटा मोटी तौर पे 30-35 करोड़ के आसपास है, ये जो लोग हैं इनको तो कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, इनको कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं। तो हमारा कहना है, लोगों ने इनका चुकाई है सरकार से, जिसको इस तंत्र में बात उठी है कि जो हमारे यहाँ संविधान है इसमें सुधार करके और चिकित्सा का फंडामेंटल राइट बनाया जाए, यानी हर व्यक्ति के लिए जितनी जरूरी की चिकित्सा मिले उसका अधिकार बन जाए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आयुष्मान सबके ऊपर लागू होना चाहिए, जो मिडिल क्लास के 32 करोड़ छूटे हैं उनके भी लागू होना चाहिए। इस सवाल को लेकर भी हमने उठाया है, इस साल में से ऊपर काफी काम किया है। तीसरी बात है आदिवासियों वाली बात, आदिवासियों के जमीन के पत्ते की मांग को लेकर भी हमने बात उठाई है। बहुत सारे इलाकों में हम लोग सुराई की लड़ रहे हैं, इसे सियाबा के इलाके में हम लोग लगातार आदिवासियों के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। और उसमें कुछ सफलताएं मिल रही हैं, कुछ अभी बकागम पकाए भी हैं, पर लगातार सफल जारी। तो आदिवासियों के लिए जमीन के पट्टे की मांग को ले सकेगी हम लोग इस्तेमाल खा रहे हैं। और आखिरी बात जो है वो ये है कि हम लोग का जो विकास की अवधारणा है, ये विकास की अवधारणा ही गलत, विकास की अवधारणा इसलिए गलत है कि भारत सरकार का जो विकास का नजरिया क्या है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में हिंदुस्तान की 42% आबादी ये महानगरीय आबादी हो जाएगी। तो अब उनकी चिंता केवल महानगरों तक है, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, तमिलनाडु का चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, ये जो महानगर है। अब सारी चिंता सरकारों की महानगरों में आधारभूत संरचना के नाम पर पैसा लगाने की, क्योंकि जो शहरों में पैसा लग रहा है उस शहरों के पैसे से बड़े बड़े उद्योग कारपोरेट जो कॉन्ट्रेक्टर्स लोग ठेला लोगों को पैसा मिल रहा है, उससे राजनीतिक लोगों को पैसा मिल रहा है, उससे अफसरताओं को पैसा मिल रहा है और जो सुविधाएं हैं वो शहरों तक या महारों तक सिकुड़ रही। तो हमारा कहना है कि विकास की अवधारणा वो होना चाहिए कि जिसमें 7 लाख गांव के लाभ मिल पाए, 7 लाख गांव की विकास की बात हो पाए। ये शहरों का विकास छोड़िए, अगर 1,000, 10,000, 20,000, 25,000 गांव को मार के एक दिल्ली बनती है तो हम तो कहना चाहते हैं हमारी पार्टी की राय में कि दिल्ली को मार के 25,000 गांव तैयार करें। तो हमारी इस लाइन पर लोग काम कर रहे हैं और हमें नहीं कहते कि हम सफल हो गए हैं, पर हाँ आप इतना जरूर कहते हैं कि हमने इसमें सफलता हासिल जरूर की है कि हम बगैर थके, बगैर निराश हुए, बगैर हार स्वीकार किए हुए अपने संघर्ष से लगे।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर महतो
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछे, हमें अच्छा लगा, ऐसे सवालों की जरूरत है आज समाज के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।